लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, जब तक इस धरती में हमारा जीवन है, हमारे जीवन में दुख, तकलीफें और मुसीबतें सदैव बनी रहेंगी। और सही अर्थ में यदि कहा जाए तो हमारे जीवन की उन दुखद और कठिन परिस्थितियों में ही ईश्वर पर हमारे विश्वास, धैर्य और उनके प्रति हमारे सच्चे प्रेम की अग्नि परीक्षा होती है। अपने जीवन के तूफानी क्षणों में हमारा धैर्य में बना रहना और अविचलित हुए अपने जीवन के सारी मुसीबतों का बखूबी सामना करना हमारे लिए इस बात का मापदंड होता है कि ईश्वर पर विश्वास और भरोसा की हमारी जड़ें गहरी हैं। जी हाँ श्रोताओ, ईश्वर पर अपने विश्वास, भरोसा और प्रेम की मजबूत जड़ों के कारण ही हम अपने जीवन में सदैव सबल बने रहते और अपनी सुदृढ़ता में आगे बढ़ते जाते हैं। श्रोताओ, 12वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमें ईश्वर के साथ अपने संबंध को देखने का आह्वान करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास, भरोसा और प्रेम की परख करें। अपने जीवन में आने वाले झंझावतों का सामना हम किस रूप में करते हैं? क्या हम अपने जीवन की कठिनाइयों में विचलित हो जाते हैं? क्या हमारा विश्वास जीवन देने वाले ईश्वर पर डगमगा जाता है? क्या हम अपने जीवन की मुसीबतों को देखकर घबराहट में हताश और निराश हो जाते हैं?
उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थीं। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाती हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ख्रिस्त में अपने विश्वास, भरोसा और प्रेम को मजबूत बनाए रखने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में विचलित हुए बिना अपने को उनके साथ संयुक्त रख सकें। श्रोताओ, आज का पहला पाठ योब के ग्रंथ से लिया गया है, जहां हम यहवे को योब से बातें करते हुए सुनते हैं। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि योब के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह एक के बाद एक विपत्तियों के तूफान ने सारी चीजों को उससे छीन लिया, लेकिन उन सारी विपत्तियों और दुखदायी घटनाओं के बावजूद योब का विश्वास, भरोसा और प्रेम अपने ईश्वर पर अडिग बना रहा। वह अपने जीवन की सारी चीजों को खोने के बाद भी अपने ईश्वर पर अपनी आस्था को नहीं खोती और न ही ईश्वर के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी ही करते हैं। हम योब के विश्वास, भरोसा और धैर्य को उनके उच्चरित वचनों में पाते हैं। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया है, उनके नाम की स्तुति हो। योब अपने जीवन की सारी चीजों को ईश्वर से मिले हुए उपहारों की तरह देखता है, जिस पर उसका कोई स्वामित्व और अधिकार नहीं है, और इसी कारण उन सारी चीजों को खोने के बाद भी और यहाँ तक कि अपने सारे संतानों की मृत्यु होने पर भी वह विचलित नहीं होता, परंतु ईश्वर की स्तुति और महिमा में ज्यों का त्यों बना रहता है। श्रोताओ, धर्म ग्रंथ बाइबल योब को सारी मानव जाति के लिए एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता है, इस संदर्भ में कि दुनिया की चीजों के संबंध में हमारे मनोभाव क्या होने चाहिए। याहवे का योब के संग वार्ता में हम इस बात को पुनः और अधिक गहराई में पाते हैं, जहां ईश्वर सारी सृष्टि में व्याप्त अपनी सर्वशक्तिमता को घोषित करते और सारी चीजों में अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। योब के ग्रंथ 38वें अध्याय में ईश्वर मानव को चुनौती देते हैं, जो अपनी बुद्धि, क्षमताओं और योग्यताओं का डींग हांकता है। ईश्वर की सर्वशक्तिमता और दिव्यता के सम्मुख मानव समुद्री तरंगों की भांति है, जो अपने में विलुप्त हो जाता है। अतः घमंड करने के बदले मानव अपने मनोभावों को ईश्वरीय योजना के अनुरूप उनके प्रेम में नवीन करने हेतु बुलाया जाता है। श्रोताओ, ईश्वर का यह निमंत्रण हमें कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम पुनर्जीवित प्रभु में नए प्राणी बनने हेतु बुलाए गए हैं। मसीह हमारे प्रेम के कारण मर गए और जी उठे, जिससे हम जो जीवित हैं अपने लिए नहीं, वरन दूसरों के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। हमें ईश्वर में नया जीवन मिला है, अतः हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को नया जीवन देने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। हमें अपने जीवन की पुरानी बातों को छोड़कर नई चीजों को धारण करने का आह्वान किया जाता है, जो दूसरों के लिए जीवन का कारण बने। श्रोताओ, हम सबों में ऐसा केवल तब होता है जब हम अपने को ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होने देते हैं, जब हम उनके प्रेम को अपने जीवन में देखते, पहचानते और उस अनुभव किए गए प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को जीने का एक प्रयास करते हैं। श्रोताओ, ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कई रूपों में व्यक्त किया गया है, जिसका एक प्रतिरूप हमारे लिए आज का सुसमाचार घोषित करता है। चेले समुद्र की प्रचंड आंधी में डूबने को थे और उन्होंने अपने प्रभु को पुकारा कि वे उन्हें मौत से बचाएं। कितनी मर्तबा हमने अपने जीवन की नैया को कठिनाइयों और मुसीबतों में फंसा हुआ पाया, कितनी बार हम मौत के मुख से सुरक्षित बाहर निकाले गए। हमारे जीवन में कितनी परिस्थितियां ऐसी आईं जहां हमें यह पता नहीं चला कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उन अंधकार भरे द्विधा के क्षणों में यीशु ने हमारी ओर मुक्ति का हाथ बढ़ाकर हमें सही दिशा में बढ़ने हेतु मदद की है। हम मुसीबतों, कठिनाइयों और विपत्ति में पड़े थे, लेकिन उन सारी परिस्थितियों ने हमारा बाल बांका नहीं कर पाया। जिस भांति यीशु ने अपने शिष्यों की भयभीत पुकार सुनी और उनके लिए समुद्र और आंधी को शांत कर दिया, उसी भांति यीशु हम सबों की पुकार को सुनते और हमारे जीवन में उठे तकलीफों के तूफान को शांत करते हैं। जीवन में विभिन्न तरह की घटनाओं और तकलीफों से बचाए जाना हमारे लिए ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करता है, लेकिन हम इसे बहुधा नहीं समझ पाते हैं। अतः यीशु हमें भी चेलों की भांति फटकारते और हमें अपने ऊपर विश्वास करने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम उनसे निवेदन करें कि वे हमें अपनी उपस्थिति को विभिन्न व्यक्तियों और घटनाओं में देखने, जानने और समझने हेतु मदद करें, जिससे हम उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हुए अपने जीवन को उनके प्रेम में सदैव नवीन बना सकें।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 19 जून को रोम धर्म प्रांत के आजीवन उपयाजकों से मुलाकात करते हुए उनकी प्रेरिताय पर चिंतन किया। वैटिकन द्वितीय महासभा के दस्तावेज लुमेन जेंसियम में उपयाजक पद को पदानुक्रम की उचित और स्थायी डिग्री कहा गया है। उसमें कहा गया है कि उपयाजक पर हाथ रखा जाता है पुरोहिताय के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए। संत पापा ने कहा, उपयाजक खासकर लोगों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, जो हमें स्मरण दिलाते हैं कि कलीसियाई शरीर में कोई भी ऊपर नहीं होता। हम सभी झुकने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि यीशु झुके। उन्होंने अपने आप को सभी का सेवक बनाया। कलीसिया में यदि कोई बड़ा है तो सिर्फ वे हैं जिन्होंने अपने आप को सबसे छोटा और सबका सेवक बनाया। संत पापा ने कहा कि यीशु के शिष्यों के लिए प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना, और सेवा करने का अर्थ है राज्य करना, क्योंकि सेवा में ही शक्ति है। संत पापा ने चेतावनी दी कि यदि सेवा के आयाम को ना जिया जाए तो यह खोखला हो जाएगा, और यदि कोई प्रेरिताय अंदर से खोखली होती है तो वह फलहीन हो जाती और धीरे धीरे दुनियादारी की ओर बढ़ती है। संत पापा ने कहा कि उपयाजक कलीसिया को याद दिलाते हैं कि कलीसिया का हृदय प्रेम से प्रज्वलित है। यह एक विनम्र हृदय है जो सेवा से धड़कता है। उपयाजक संत फ्रांसिस की तरह दीनता और खुशी से सेवा करते हुए वे ईश्वर के सामीप्य को दूसरों के लिए लाते हैं। वे ईश्वर की विनम्रता की महानता को प्रकट करते हैं जो सबसे पहले कदम बढ़ाते और उन लोगों के पास भी जाते हैं जो उनसे अपना मुंह फेर लेते। संत पापा ने उपयाजकों को याद दिलाते हुए कहा, आज एक दूसरे आयाम पर भी ध्यान देना है। पुरोहितों की संख्या में कमी ने स्थानापन कार्यों में उपयाजकों की एक प्रचलित प्रतिबद्धता को प्रकाश में लाया है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, उपयाजक की विशिष्ट प्रकृति का गठन नहीं करता। उपयाजक सबसे बढ़कर उदारता और प्रबंधन के कार्यों में समर्पित हैं। इस संबंध में आरंभिक कलीसिया की याद आती है, जब उपयाजकों ने धर्माध्यक्षों की ओर से और उनके नाम पर विश्वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। संत पापा ने रोम के उपयाजकों से आशा व्यक्त की कि वे विनम्र बने, अच्छे पति और अच्छे पिता बने, और प्रहरी बनकर ख्रिस्त समुदाय में गरीबों में यीशु को देखने के लिए प्रेरित करें। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, ईश्वर जानते हैं कि हमें बचाने का एकमात्र रास्ता है हमें अंदर से चंगाई प्रदान करना, जिसको हमें प्रेम करने के द्वारा प्रदान करते हैं। वे जानते हैं कि हम सभी बेहतर बन सकते हैं जब हम उनके अचूक अपरिवर्तनीय प्रेम को स्वीकार करते जो हमें बदल देता है। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 18 जून को जॉर्जिया के राष्ट्रपति सलोमे जौरा बिकविली से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जिसमें परमधम पीठ एवं जॉर्जिया के अच्छे संबंधों की सराहना की गई, खासकर संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में तथा देश में कैथोलिक कलीसिया के योगदान पर भी गौर किया गया।
महामारी से सबसे अधिक पीड़ित लोगों की मदद के लिए संत पापा फ्रांसिस ने परम धर्म पीठीय कोष के दानदाता कार्डिनल कॉनराड क्रेजेस्विकी के माध्यम से 9 देशों के प्रेरितिक दूतावास में वेंटिलेटर और चिकित्सा उपकरण भेजे। लैटिन अमेरिका से भारत तक, दक्षिण अफ्रीका और सीरिया होते हुए पापुआ न्यू गिनी तक महामारी की शुरुआत के बाद से पीड़ित लोगों के लिए संत पापा फ्रांसिस द्वारा ठोस दान अभी रुका नहीं है। इस कारण से कार्डिनल क्रेजेस्विकी द्वारा समन्वित परम धर्म पीठ उदार संगठन ने 38 वेंटिलेटर खरीदी और 17 जून को उन्हें अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सामग्री के साथ कुछ देशों को भेजा, जिन्हें अभी भी जीवन रक्षक उपकरणों की आवश्यकता है। अभी भी लगभग 50 मिलियन पीड़ितों के दुखद रिकॉर्ड से ब्राजील और भारत के लिए क्रमशः 6 जीवन रक्षक उपकरण, अर्जेंटीना और कोलंबिया के लिए 5, चिली और दक्षिण अफ्रीका के लिए 4, बोलीविया और सीरिया के लिए 3 और पापुआ न्यू गिनी में 2 जीवन रक्षक उपकरण अस्पताल की सुविधाओं को इन देशों के प्रेरितिक राजदूतावास में भेजा गया और वहां से प्रेरितिक राजदूत द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में वितरित किया जाएगा। यूरोप प्रतिबंध के बिना यात्रा करने के लिए ग्रीन पास के बारे में सोच रहा है। वारियंट का प्रकार भयावह है और यूनाइटेड किंगडम में संक्रमण बढ़ रहा है। रूस और पुर्तगाल में डेल्टा संक्रमण के 11,000 संक्रमित पाए गए हैं। लिस्बन में बाहर से आगमन और प्रस्थान को अवरुद्ध कर दिया गया है। उधर मुंबई हाईकोर्ट ने 17 जून को बुजुर्ग भारतीय जेसुइट फादर स्टेन स्वामी के मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उनके निजी अस्पताल में रहने की अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। फादर स्टेन स्वामी झारखंड राज्य में आदिवासी लोगों के अधिकारों के कार्यकर्ता 5 जुलाई तक अस्पताल में रहेंगे। माओवादी विद्रोहियों के साथ कथित संबंध के लिए भारतीय आतंकवादी विरोधी एजेंसी निया द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। फादर स्टेन पर देशद्रोह और महाराष्ट्र राज्य के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुए दंगों में शामिल होने का आरोप है, लेकिन फादर स्टेन स्वामी ने हमेशा आरोपों को खारिज किया है। उन्हें पार्किंसन है और हाल ही में उन्हें कोविड-19 भी हुआ है। जेल ने उनके स्वास्थ्य को और भी खराब कर दिया और इसलिए 28 मई को उन्हें मुंबई के होली फैमिली कैथोलिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इस्तीफा जून 14 के लिए निर्धारित किया गया था, तब महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय ने 18 जून तक विस्तार दिया। फादर की शारीरिक स्थिति को देखते हुए चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से गंभीर के रूप में परिभाषित किया गया। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई तक एक और अवमानना दे दी। फादर स्वामी के साथियों ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, इसके बारे में कोई अन्य विवरण नहीं जानते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।